थैंक यू सो मच डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे, थैंक्स अगेन। इट्स माई ड्यूटी, डॉक्टर ने सौम्यता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर दोनों उनके चैम्बर से बाहर निकल गए। कार तक पहुंचते तक शान ने आरवी के हाथ को कस के थामा हुआ था और उसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। सारा रास्ता आरवी खिड़की से बाहर देखते हुए खुद ही खुद में मुस्कुराती रही। शान उसे खुश देखकर खुश था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, बस मध्यम आवाज में गाड़ी में गाना बजता रहा। रास्ता कटा और कार मल्होत्रा निवास में एंटर करते हुए सीधे अंदर गेट के सामने जाकर रुकी। आरवी अब भी खुद में ही खोई हुई थी। शान ने निगाहें उसकी तरफ घुमाई, फिर सीट बेल्ट खोलते हुए उसकी तरफ घूमकर उसके गोरे गोरे गाल को चूम लिया। उसके लबों के स्पर्श से आरवी चौंकते हुए होश में लौटी और हैरानगी से निगाहें शान की तरफ घुमाकर आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगी। शान उसके भावों को देखकर बेफिक्री से मुस्कुराया। काफी देर से देख रहा हूँ, जाने कहाँ खोई हो और खुद में ही मुस्कुराई जा रहे हो, सो आई वॉज जस्ट चेकिंग कि मेरा लम्स तुम्हें होश में ला पाता है या नहीं। शान के जवाब पर पहले तो वो हैरान हुई, फिर झेमते हुए उस पर से निगाहें हटा ली। वैसे क्या सोच रही थी तुम? शान की आवाज़ उसके कानों से टकराई और इसके साथ ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने सकपकाते हुए कहा, नहीं कुछ भी नहीं सोच रही थी, घर आ गया, मैं जाती हूँ। आरवी ने शान से बचने के लिए तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने को मुड़ी ही थी कि शान ने उसकी गोरी पतली कलाई को पकड़ लिया। आरवी ने घबराकर अपनी आंखों को भींच लिया और थरथराते लब हल्के से हिले। छोड़ दीजिए ना। छोड़ने के लिए थोड़े ना पकड़ाए स्वीट हार्ट, एक बार फिर शान ने बेफिक्री से जवाब दिया और लबों पर कातिलाना मुस्कान सजाए उसे देखने लगा। आरवी ने घबराते हुए सर घुमाकर उसको देखा। वहीं शान ने उसके घबराए चेहरे को देखकर गहरी निगाहों से उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरे सवाल का जवाब तुम्हारी आंखें और चेहरा दे गए, तो अब घबराने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैंने तो बस तुम्हें ये कहने के लिए रोका है कि जिन ख्यालों में तुम खोई थी और खुद ही खुद में मुस्कुरा रही थी, अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। आज शाम को 5 बजे तैयार रहना, तुम्हें लेने आऊँगा और आज की शाम और पूरी रात हम साथ बिताएंगे। वादा रहा, आज की शाम तुम जिंदगी भर नहीं भूल सकोगी। आज तुम्हारी हर ख्वाहिश हर चाहत को पूरा करूँगा। इतना प्यार करूँगा तुम्हें कि तुम उन हसीन लम्हों को हर पल महसूस करोगी। आज तुम्हारी तड़प बेकरारी बेताबी का अंत होगा, तो तैयार रहना मेरी चाहत की बारिश में भीगने के लिए। शान की बातें सुनकर शर्म से आरवी की पलकें झुक गईं। अधरों पर शर्मीली सी मुस्कान काबिज हो चुकी थी और गोरे गाल कश्मीरी सेब जैसे लाल हो चुके थे। उसने सकुचाते हुए सहमति में सर हिला दिया, फिर हौले से पलकें उठाकर उसको देखते हुए बोली, अब जाऊं? शान ने इजाज़त दे दी और आगे बढ़कर उसके गुलाबी गालों को चूमने के बाद उसकी कलाई छोड़ दी। आरवी तुरंत कार से बाहर निकल गई और अंदर की तरफ भाग गई। उसकी हड़बड़ाहट देखकर शान बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुरा दिया और कार वापस घुमा ली। शान की बातों से आरवी के तन बदन में सिहरन सी दौड़ गई थी, दिल जोरों से धड़कने लगा था। बेचैन कदम सीधे अंदर हॉल में आकर रुके और अपनी आंखों को भींचे सीने पर हाथ रखे वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उन एहसासों में वो इतनी उलझी हुई थी कि ये तक नहीं देखा कि हॉल में बैठे सभी लोगों की नजरों में आ चुकी है वो। आरवी अब भी आंखें मूंदे अपनी बढ़ी धड़कनों को संयमित करने की नाकाम सी कोशिश करने में लगी थी, जब उसके कानों में सावित्री जी की आवाज़ पड़ी। आरवी बेटा, क्या हुआ आपको? आप इतनी हाफ क्यों रही हैं और चेहरा इतना लाल क्यों है आपका? इस आवाज़ के कानों में पड़ते ही उसने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने बैठी सावित्री जी, अर्पिता जी, सुभाष जी, सुयश जी, छाया, सबकी परेशान निगाहें उसी पर टिकी थी। आरवी की आंखें हैरानी से फैल गईं और जान हलक में अटक गई। उसने तुरंत अपने हाथ नीचे कर लिए और हड़बड़ाहट में बोली, जी वो बाहर बहुत गर्मी है ना, बस इसलिए। आप शान के साथ गई थी ना, वो आपको छोड़ने नहीं आए? अर्पिता जी ने हैरानी से सवाल किया, जिस पर आरवी ने तुरंत सर हिलाते हुए कहा, जी वही छोड़कर गए हैं। फिर आप इतना हाफ क्यों रही हैं? और गाड़ी में एसी चल रहा होगा, फिर भी आपको इतनी गर्मी लग गई? आरवी अब समझ नहीं सकी कि क्या जवाब दे उनके सवालों का। उसने कुछ पल की खामोशी के बाद सोचते हुए जवाब दिया, वो बाहर के गेट पर छोड़ गए थे, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। आरवी ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसकी हड़बड़ाहट देखकर पहले तो सभी चौंक से गए, फिर मुस्कुरा उठे। कुछ देर बाद आरवी हाथ मुंह धोकर वापस आई और सबके बीच आकर बैठ गई। वहां बैठी जरूर थी वो, पर दुलो दिमाग में शान की कही बातें गूंज रही थी और रह रहकर पेट में गुदगुदी थी होने लगती। मन रात के सुनहरे सपने संजोने लगा था। आज फाइनली वो पल उसके नसीब में आने वाला था, जिसका इंतजार उसने जाने कब से किया था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जिसे देखकर बाकी सब भी खुश थे। सुबह से दोपहर हुई, अंशु स्कूल से लौट आई तो आरवी उसमें व्यस्त हो गई। उसके कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर उसको नीचे ले आई। सबने बैठकर लंच किया। उसके बाद आरवी ने अंशु का होमवर्क करवाया, क्योंकि शाम को तो वो रहेगी नहीं, यही सोचकर उसने पहले ही उसका होमवर्क करवा दिया और उसके बाद उसको सब बातें अच्छे से समझाने के बाद सुला दिया। देखते ही देखते घड़ी ने 4 बजा दिए और आरवी अंशु को सुलाकर खुद तैयार होने के लिए कपड़े निकालने चली गई। हमेशा बिन सोचे समझे कुछ भी पहन लेने वाली आरवी आज सोच सोचकर और कपड़ों को देख देख कर परेशान हो गई, पर उसको कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसकी मनोदशा आज बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी टीनेज लड़की को पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाना हो। उस पल उसकी एक्साइटमेंट और खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होता और घबराहट भी होती है। खुद को सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाने की कोशिश में वो अपने सब कपड़ों को छान मार लेती है, पर शैतान मन को कुछ पसंद ही नहीं आता। उस पल में उसको एहसास होता है कि उसके पास तो बहुत कम कपड़े हैं, कोई भी ढंग की ड्रेस नहीं जो पहनकर वो बाहर जा सके। कुछ भी आज उस पर अच्छा ही नहीं लग रहा है। यही हालत आज आरवी की थी। आज उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। खुद ही अपने हर कपड़े में कमियां निकालकर उन्हें रिजेक्ट किए जा रही थी। काफी देर कपड़ों में उलझे रहने के बाद आखिर में आरवी ने एक ब्लू कलर की प्लेन साड़ी निकाली और चेंज करके तैयार होने लगी। वक्त तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते घड़ी ने 5 बजने का इशारा किया। अंशु अब भी सो रही थी। आरवी ने उसको बेड के बीचों बीच अच्छे से सुलाया, उसके सर को प्यार से चूम लिया, फिर अपना पर्स और फोन लेकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। अब भी उसे हॉल में ही सब मिल गए। आरवी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरती हुई नीचे पहुंची। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी, और टिकती भी क्यों ना। गार्क ब्लू रंग की साड़ी, कट स्लीव गोल्डन ब्लाउज, खुले घुंघरेले बाल जिन्हें आगे से स्टाइल करके ढीले रबर में बांधकर दाईं कंधे से आगे की तरफ किया हुआ था। मांग में सुर्ख सिंदूर चमक रहा था। लबों पर न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई थी। गले में बस मंगलसूत्र पहना हुआ था। हाथों की कलाइयों में भरी भरी नीली चूड़ियां, पैरों में पाजेब जिनकी मधुर ध्वनि मधुर संगीत बनकर वहां हवाओं में खुलने लगी थी। बहुत प्यारी लग रही थी वो। हमेशा सिंपल सादे रूप में रहने वाली आरवी आज सोलो श्रृंगार किए उनके सामने पूरी तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर खड़ी थी। सब हैरानी से उसे ही देख रहे थे। उसको यूं तैयार देखकर सुभाष जी ने तुरंत ही उससे सवाल किया, आरवी बेटा आप कहीं जा रही हैं? आरवी ने तुरंत ही हां में सर हिलाते हुए कहा, यस डैड। कहां जा रही हैं आप अकेले? ये सवाल सुयश जी का था, जिस पर आरवी ने छट से जवाब दिया, अकेले नहीं जा रही बड़े पापा, वो आने वाले हैं।
आप शान के साथ बाहर जा रहे हैं? अर्पिता जी ने अगला सवाल किया, जिसे सुनकर आरवी थोड़ा शर्माई, फिर निगाहें झुकाते हुए हां में सर हिला दिया। अब की बार सावित्री जी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो अच्छी बात है बेटा, जाइए और साथ में वक्त बिताइए, हम तो कहेंगे कि डिनर भी बाहर ही कर लीजिएगा। उनकी बात सुनकर बाकी सब मुस्कुरा दिए। वहीं आरवी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने निगाहें उठाकर सबको देखा और अपने पर्स पर अपनी पकड़ कसते हुए घबराते हुए बोली, माँ वो हम। आरवी कुछ कहना चाह रही थी पर लाज के मारे कह नहीं पा रही थी। मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अपने मुंह से कैसे कहे कि वो तो रात को आने ही नहीं वाले हैं। सब क्या सोचेंगे ये सोच सोचकर उसको घबराहट होने लगी थी। उसको परेशान होते देखकर सबकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी। उसकी लड़खड़ाती जुबान देखकर सावित्री जी ने बड़े ही प्यार से उससे सवाल किया, क्या हुआ बेटा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप, साफ साफ कहिए बेटा। आरवी अपनी उंगलियों को तोड़ने मरोड़ने लगी और निगाहें बेचैनी से घुमाते हुए बोली, माँ वो मैं कह रही थी कि वो हम, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। एकाएक वहां शान की आवाज गूंजी और सबके साथ साथ आरवी ने भी चौंकते हुए आवाज की दिशा में नजरें घुमाई तो शान अंदर आता नजर आया। आरवी ने बेचारगी से उसे देखा। इतने में शान उसके पास चला आया। बाकी सब उसे ही देख रहे थे। सावित्री जी ने अब शान को देखकर सवाल किया, शान बेटा क्या नहीं होगा आरवी से? आपकी शर्मीली बहू से आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। शान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आरवी ने मुंह बिचकाते हुए अपना सर झुका लिया। वहीं अर्पिता जी ने शान को देखकर चौंकते हुए सवाल किया, आप कहना क्या चाहते हैं शान? ऐसी कौन सी बात है जो आरवी हमें नहीं बता सकती, और अगर वो नहीं बता सकती तो आप ही बता दीजिए। उनका सवाल सुनकर शान ने एक नज़र अपने बगल में शर्माई हुई सी सर झुकाए खड़ी आरवी को देखा, फिर सबको देखकर मुस्कुराकर बोला, हम दोनों बाहर जा रहे हैं और आज रात घर नहीं लौटेंगे। यही बताना चाह रही थी आरवी आप सबको, पर बता नहीं पा रही थी, शान ने सहजता से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सभी चौंक गए। आरवी ने घबराकर अपनी आंखों को भींच लिया। अब जाकर उन्हें आरवी के घबराहट की वजह समझ आई और उनके अधरों पर मुस्कान सज गई। टू बी कंटिन्यूड।